बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तहज़न में स्पेशल लेसन है कि एक पैगंबर का हुज़न, यानि हम लोग अपने गम के साथ या अपने ग्रीफ़ के साथ जब डील कर रहे होते हैं तो रियली हमें कोई भी इन अल्फाज में तसल्ली नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी गम को या मैं तुम्हारी तकलीफ़ को या मैं तुम्हारे ग्रीफ़ को पूरी तरह समझती हूँ। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। जैसे किसी का कोई जिस वालदैन है या किसी की औलाद है या किसी का हस्बैंड है या वाइफ है और उनको उनका लॉस फेस करना पड़ता है, तो ज़िंदगी में जो ह्यूमन लॉस है ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये मतलब कि फ़लसफ़ा भी यही कहता है, दीन भी यही कहता है, बाकी साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक इंसान का लॉस जो है वो एक उसके साथ वाले इंसानों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो रिकवरेबल नहीं है। दौलत, पैसा, हाथ का मैल है, वापस आ जाता है, वक्त बदल जाता है, लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, बिल्डिंग टूट गई है एक और बन जाती है, फल और खेत तबाह हो गए हैं तूफ़ान में, जल गए हैं, अगला सीज़न आएगा फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको साथ लेके हम पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो किसी को ये नहीं पता होता कि हमारी कितनी ज़िंदगी होगी या हम कितना पढ़ेंगे, हमारा क्या प्रोफेशन होगा, हमारी शादी होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे, किसी को ये नहीं पता होता। लेकिन हम इन सब चीज़ों की तैयारियों में लग जाते हैं। हम उस वक्त उस बच्चे के लिए एक कॉलेज फ़ंड बनाते हैं और हम उसके लिए प्यारे प्यारे ड्रेसेस उसके साइज़ से बड़े बड़े ख़रीदते हैं, और हत्ता ये कि हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा है और इसकी ये बड़ी प्यारी एक कज़न है तो मैं तो इसका रिश्ता इसके साथ करूँगी। इस तरह की बातें, यानी हम सारा वक्त फ्यूचर में सोचते रहते हैं। लेकिन जिस वाहिद हकीकत के साथ वो बच्चा पैदा हुआ होता है वो ये है कि जो पैदा हुआ है वो दुनिया को छोड़कर भी जाएगा। आज जो दुनिया में आया है इसने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और वो टाइम हरगिज़ नहीं प्रेडिक्टेबल, वो किसी को भी नहीं पता कि वो कौन सा टाइम है जिस पे इस ये आने वाला जो है ये नन्ना मेहमान जो है ये हमें छोड़कर चला जाएगा। कुरान में है कि तुम में से कुछ लोग बचपन में ही रुखसत हो जाते हो और कुछ शिद्दत में पहुंचते हैं, जवानी में पहुंचते हैं और वो चले जाते हैं, कुछ एक नाकारा और बेकार उम्र में पहुंचते हैं और वो फिर तब रुखसत होते हैं। तो ये रियली इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम में से किसी को ये नहीं पता कि हम दुनिया कब छोड़ कर जाएंगे। और चूंकि हमें ये नहीं पता होता तो हम दुनिया में खूब मगन रहते हैं और हम एक भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये मैं एक नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही कि हमें अपनी मौत भूली हुई होती है, मौत हमें बाय डिज़ाइन भूली हुई होती है। अगर हमें मौत जैसी हकीकत हर वक्त याद हो तो आप सोचें कि जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए भी और वो जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उन्हें ये पता हो कि इन्होंने इस डेट में और इस टाइम में ये हमारा प्यारा जो है ये हमसे बिछड़ जाएगा या हम जो हैं हम अपने प्यारों से बिछड़ जाएंगे। तो ये अल्लाह मियाँ का एक सिस्टम है जिसके तहत दुनिया चल रही है, लोग आते हैं और रहते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, कोई जो हैं मोहब्बतें करते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, वो और मज़ीद इंसान पैदा करते हैं और फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और रुखसत होने वालों के बारे में कुरान में बहुत क्लियर वादे हैं कि ये एक बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त जगहों पर हैं और बड़े प्यारे बाग हैं वो, और वहाँ पर इनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती है और वहाँ पर इन्हें गर्म हवा भी नहीं लगती और सर्द हवा भी नहीं लगती और वहाँ पर ये कोई नॉनसेंस बातें भी नहीं सुनते। हत्ता के कुरान में ये भी है, इतनी क्यूट बात है कि ये वहाँ पर कोई लगव बातें नहीं सुनते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी इनको अपसेट करने वाली बातें नहीं होती। तो जो रुखसत हो जाते हैं वो तो यकीनन एक बहुत प्यारी जगह पे होते हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं वो चूंकि इंसान हैं और इस दुनिया में रहते हैं और वो पर्दे के उस पार नहीं देख सकते कि वो जाने वाले कहाँ चले गए हैं, और हमारी कुछ तरबियत भी ऐसे होती है कि हम कुरान के समहाव, हम ज़्यादातर, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, हम कुरान के इतने करीब नहीं होते कि हमें ये सब बातें पहले से पता हों, और अगर हमें पता हों भी तो अपने गम में और ग्रीफ में इन बातों से समझौता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान में एक नफ्स है और वो नफ्स जो है वो मुसलसल उसे यही कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और यही ग्रीफ की पहली स्टेज है, जो बेयकीनी की स्टेज है। साइकोलॉजी में ये है कि द फर्स्ट स्टेज इज़ शॉक, जिसमें इंसान यही कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, या वो गुस्से में आके ये कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब नेचुरल बातें हैं। और आज का सबक जो है, मैं मुख्तसरन आपको सूरह यूसुफ के हवाले से पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि कुरान में अगर किसी पैगंबर का पर्सनल लॉस का ज़िक्र हुआ है कि उसकी एक प्यारा बच्चा उससे बिछड़ गया था, और वो कहानी जो है उसको कुरान की सबसे खूबसूरत कहानी कहा गया है, कुरान में ही कहा गया है कि हम तुझे एक बड़ा अहसनुल कसस, यानी सबसे बेहतरीन कहानी हम तुम्हें सुनाते हैं, और वो है सूरह यूसुफ, जो कुरान की 12वीं सूरत है। अल्लाह करे कि हम सब मिल के वो पढ़ें। तो सूरह यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बयान है, और ये उनकी एक पर्सनल ट्रेजेडी का बयान है। हैं तो वो पैगंबर और बड़े ज़बरदस्त पैगंबर थे, 12 बेटे थे उनके, और दो तो उसमें से कन्फर्म्ड पैगंबर हैं, बाकी भी उनमें से सुना है कि वो सारे पैगंबर थे बनी इसराइल के। तो हज़रत यूसुफ जो हैं, ये इनकी दूसरी बीवी में से सबसे छोटे बेटे थे। ये दो भाई थे, एक हज़रत बिन्यामीन थे और दूसरे हज़रत यूसुफ थे। और इसराइली रिवायात के मुताबिक इनकी वालदा जो थी वो इनकी पैदाइश में फ़ौत हो गई थी, तो यानी ये बग़ैर माँ के भी थे। और उनका हुसन, इनका मौजज़ा था, तो इंतहाई खूबसूरत बच्चे थे। और इनके बारे में हज़रत याकूब को ये पता था, ये इल्हाम था उनको कि ये पैगंबर बनेगा, और इसकी बहुत ज़बरदस्त तकदीर अल्लाह ने लिखी है, ये बहुत उनका नाम रोशन करने वाला है। तो कहानी हम सबको पता है, मैं मुख्तसरन यही बता देती हूँ कि जो बाकी 10 भाई थे वो बड़े सख्त हसद में मुब्तला थे, क्योंकि हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये लोग सारे किनान में रहते थे, जो इजिप्ट से ज़रा दूर एक जगह है, किनान में बनी इसराइल आबाद थे। तो हज़रत यूसुफ छोटे ही थे, मतलब रिवायात में ये है, कोई कहता है 4 साल के थे, कोई कहता है 5 साल के थे, कोई कहता है 7 साल के थे, बट ही वॉज़ वेरी वेरी यंग जब उनके भाई उनके अब्बा से झूठ बोलकर कि हम इसे खेलने के लिए ले जा रहे हैं और हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे, तो वो हज़रत यूसुफ को जाके ले गए और वहाँ पे कुएं में डाल के आ गए, और बाप को झूठ बोला, उसको एक कमीज़ दिखाई, ये पूरा बयान कुरान में है। एक कमीज़ पर उन्होंने एक भेड़िए का खून लगाया या किसी जानवर का खून लगाया, और जाके बाप को दिखाया और कहा कि देखो यूसुफ को तो भेड़िया खा गया है, और हम तो वहाँ बस ज़रा सी हमारी आँख इधर उधर हुई और वो उसको भेड़िया खा गया। तो अब ये एक यानी कयामत टूट पड़ेगी, अगर हमें, आप सोचें अपने बच्चों के बारे में और अपने प्यारों के बारे में, अगर आपको कोई आके, और जिसके बारे में आपको पहले से शक भी हो कि ये मेरे बच्चे से बड़े जेलस हैं और ये मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, तो आप सोचें वो ट्रेजेडी और वो दुख और उसकी गहराई आप सोचें कि हज़रत याकूब जो हैं, एक तो उनको बेटे के गुमने का दुख है, लोग कहते हैं ना कि मर जाए लेकिन गुमे नहीं, तो अब ये बच्चा गुम गया है, उनका फेवरेट तरीन बच्चा है ये, उनकी मरहुमा बीवी की आखिरी निशानी है और अब ये गुम गया है, तो इसका दुख यानी इंसान का दिल फट जाता है ये सोच के। दूसरा दुख जो है वो उनको अपने बड़े बेटों की तरफ से फरेब का दुख है, क्योंकि ये पैगंबर थे और इनको अंदाज़ा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो उन्हें अपने, वो इतने ग्रेसफुल थे और इतने डिसेंट थे, और वो उनको क्या कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो उन्हें, उनको पता था कि इन्होंने आगे से यही अड़े रहना है कि नहीं हम ठीक कह रहे हैं। और तीसरा दुख जो है वो उनका रिग्रेट था कि ए याकूब, आपको तो पता था कि ये उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी आपने बच्चे को इनके साथ भेज दिया। तो एक मल्टीपल, एक साइकोलॉजिकल आप समझें, एक डेवस्टेशन है जो उस वक्त हज़रत याकूब ने फ़ेस की, और काफ़ी उनकी उधेड़ उम्र थी, वो उस वक्त यंग नहीं थे, और उन्होंने ये दुख फेस किया कि उनका फेवरेट तरीन बेटा जो था वो गुम गया, और उनके बाकी 10 बच्चे जो थे वो उस साजिश में शरीक थे, और उनको रिग्रेट भी था कि जानते बूझते उन्होंने बच्चे को वहाँ भेज दिया। तो ये एक ट्रेजेडी हुई उनकी। और फिर ये था कि बाकी कहानी सूरत में है कि फिर हज़रत यूसुफ़ की कैसे तरबियत हुई और वो कहाँ गए, वो मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, इट्स नॉट रेलेवेंट। फिर ये है कि जब मिस्र में कहत आया तो हज़रत यूसुफ़ उस वक्त मिस्र के बादशाह थे, वो अज़ीज़ मिस्र थे या वो अज़ीज़ मिस्र के वज़ीर आज़म थे, और उस कहत के दौरान ये सारे भाई जो हैं कनान से वहाँ गए हैं अपना अपने हिस्से का गल्ला और गेहूं लेने के लिए। और हज़रत यूसुफ़ जब वो गेहूं देने गए थे, क्योंकि चंद साल शुरू में कहत जो था वो बहुत ज़्यादा पैदावार हुई थी, और उस वक्त हुक्म था कि गल्ला जमा किया जाए क्योंकि एक कहत आने वाला है। तो जब ये गल्ला डिलीवर करने गए थे तो हज़रत यूसुफ़ ने इनसे हज़रत बिन्यामीन के बारे में पूछा था, जो उनके सगे भाई थे, और उन्होंने उस वक्त इन्हें हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि जब तुम गल्ला लेने आओ ना तो अपने उस भाई को साथ लाना है, तो फिर मैं तुम्हें बहुत सा गल्ला दूंगा, पता नहीं कितने ऊँट मैं तुम्हें उसके बदले में दूंगा। अब ये भाई वापस गए हैं कनान, और हज़रत याकूब को कहते हैं कि वो जो अज़ीज़ मिस्र है, जिसको ये नहीं पहचान सके कि वो यूसुफ़ है, कि वो अज़ीज़ मिस्र ने कहा है कि तुम अपने इस भाई को साथ लेकर आओ तो मैं तुम्हें बहुत सा गल्ला दूंगा। अब हज़रत याकूब एक पैगंबर हैं और उन्होंने पहले ही भाइयों का फरेब देखा हुआ है, और वो अपना प्यारा बच्चा खो चुके हैं इन्हीं भाइयों की वजह से, तो वो इनिशियली उन्हें रिजिस्ट करते हैं, लेकिन ये भाई जो हैं उन्हें कहते हैं कि तुम हम पे एतबार नहीं करते हो, एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अल्लाह करे ये सूरत हम मिल के पढ़ें, एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा है ये। तो खैर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो मान जाते हैं और बिन्यामीन को जो उस वक्त जवान हैं उनके साथ भेज देते हैं। अब बिन्यामीन जब वहाँ जाते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अल्लाह कहता है कि हमने एक चाल चली और यूसुफ़ को सिखाया कि उसने गेहूँ नापने का जो आला था वो बिन्यामीन के सामान में छुपा दिया, और इस तरह उसने उस आले की चोरी का इल्ज़ाम बिन्यामीन पे लगाया। यूसुफ़ ने कहा कि तुम में से जिसके सामान में से वो आला निकल आया तो उसे मैं रोक लूँगा क्योंकि वो तो चोर है, और भाइयों को यकीन था कि जब हमने नहीं चुराया तो उन्होंने कहा ठीक है अब हमारे सामान की तलाशी ले लें। जब तलाशी ली गई तो वो आला बिन्यामीन के सामान में से निकला, और हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ने कहा है कि हमने एक चाल चली यूसुफ़ के लिए, वरना वो कानून के मुताबिक इस भाई को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता था। तो यानी अल्लाह ने एक सबील बनाई हज़रत यूसुफ़ के लिए, और वो भाई उनके पास आ गया हज़रत यूसुफ़ ने, और ये भाई जो थे, ये बाकी 10 भाई, ये इंतहाई दहशतज़दा हो गए, क्योंकि ये पहले हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डाल चुके थे, और उन्होंने और बाप ने उनको निकलते हुए यही कहा था कि ये भाई तुम ले जा रहे हो, इससे पहले भी तुम ऐसा मामला कर चुके हो, तो अब भाई ये सोच रहे हैं कि हम वापस जाके बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। खैर ये वापस गए हैं हज़रत याकूब के पास और उनको जाके कहा है कि तुम्हारे उस बेटे ने तो चोरी की है, यानी कि वो दुख देने वाली बात और तकलीफ़ देने वाली बात कि तुम्हारे उस बेटे ने चोरी की है और उसको तो रोक लिया है अज़ीज़ मिस्र ने, उसको वहाँ रोक लिया है, और वो बार बार कह रहे हैं। अब ये जो है आयत नंबर 82, वस अलिल क़रियत अल्लती, और आप पूछ लें इस बस्ती वालों से, कुन्ना फ़ीहा, जिसमें हम थे, वलईर अल्लती, और उस काफ़िले से जिसके अकबल ना फीहा, जिसमें हम आए हैं, व इन्ना लसादिकून, अब ये कस्में खा रहे हैं कि बेशक हम सच्चे हैं। तो हज़रत याकूब उन्हें कहते हैं आयत नंबर 83, काला, उसने कहा, बल सवलत लकुम अनफुसुकुम, बल्कि एक बात बना ली है तुम्हारे दिलों ने, अमरन, एक बात, फसबरुन जमील, पर सबर खूबसूरत है, यानी तुम्हारी ये बात तो बड़ी कबीह है, बड़ी बदसूरत है, और क्या बुरी खबर तुम लेके आए हो कि मेरे एक बेटे के बाद तुम दूसरा भी घुमा के आ गए हो। लेकिन वो कह रहे हैं फसबरुन जमील, पर सबर खूबसूरत है, सबर ही अच्छा है, असल्लाह, करीब है कि अल्लाह, अय्यतियनी बेहम, ये कि वो ले आए उनको, जमिया, दोनों को, यानी वो एक बेटा तो कितने साल पहले गुमा है, साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, और दूसरा बेटा अभी अभी जवान बेटा गुम गया है इनका, और ये कह रहे हैं कि फसबरुन जमील, पर सबर ही अच्छा है, असल्लाह, मैं उम्मीद रखता हूँ, शायद के करीब है के अल्लाह, अय्या अतियानी बहन जमिया, ले आए उनको मेरे पास एक साथ, उन सब को मेरे पास ले आए। इन्नहू हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वही जानने वाला है और वही हिकमत वाला है। अब आप इस बात इस इनकी बातों से आप इनकी उस दुख का और उस ग्रीफ का अंदाज़ा लगाएं, और हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, पता नहीं। यानी एक बच्चा गुम गया और फिर उसका जवान बेटा भी गुम गया, और ये 10 जो सामने खड़े हुए हैं उसको पता है कि इन्होंने ही कोई साजिश की है, क्योंकि ये उन दोनों से बड़े जेलस थे। तो मल्टीपल एंगल्स से वो एक ग्रीफ में मुब्तला हैं। आयत नंबर 84 में अल्लाह कहता है वतवल्ला अनहु, और उसने मुंह फेर लिया उनसे, अपने उन बेटों से उसने मुंह फेर लिया। वकाला, और उसने कहा या असफा, हाय अफसोस। यानी ये पैगंबर हैं हज़रत याकूब। देखें, लोग जब हमें कहते हैं ना रो और ना तुम दुख करो और सब्र करो, नहीं, पैगंबरों ने भी अफसोस किया है, पैगंबरों को भी तासुफ हुआ है, इंसान हैं हम। अल्लाह ने कुरान में हमें बताया है कि देखो ऐसे दुगम होते हैं, ऐसे दुख होते हैं, ऐसे लॉस होते हैं जो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने ही हमारा ये दिल बनाया है। तो अल्लाह हमें ये सिखा रहा है। वकाला, और उसने कहा या असफ़ा, हाय अफसोस, अला यूसुफ़ा, मेरे यूसुफ पर। यूसुफ याद, यानी एक दुख आया है, बिन्यामीन गुम गया है, लेकिन इनको अपना वो छोटा बच्चा याद आ रहा है जो बहुत साल पहले इन्हीं भाइयों के हाथों गुम चुका है। तो कह रहे हैं कि हाय अफसोस यूसुफ पर। वबयद्दत अयनाहु, और सफ़ेद हो गई हैं उसकी आँखें, मिनल हुज़्न, उस गम से। फहुआ, पस वो कज़वीम, कज़मा, वो घूंट रहा था, वो घुट रहा था, वो अपना दुख पी रहा था, वो अपना गम जब्त कर रहा था। ये कज़ीम का लफ्ज़ जो है ना, काज़िम, जब्त करने वाला, कज़मा, घूंटना, एक चीज़ को घूंट घूंट पीना। तो ये जो उनका दुख जो बयान किया है ना अल्लाह ने, कि उसने मुंह फेर लिया अपने बेटों से और कहा कि हाय अफसोस उस यूसुफ पर। बिन्यामीन नहीं कह रहे हैं, यूसुफ, उन्हें वो छोटा याद आ रहा है। वो क्योंकि बिन्यामीन के बारे में अब बेटों ने कहा है कि वो जिंदा है और उसे कैद कर लिया है, तो इनका दिल तसल्ली से है। वो अब यद्दत आई ना हो, और सफ़ेद हो गई हैं उसकी आँखें, मिनल हुज़्न, गम से, रो रो के। फहुआ कज़ीम, बस वो अपना गम घूंट घूंट पी रहा था। कालू, बेटों ने कहा तल्लाहे, अल्लाह की कसम, तफ्तउ तस्कुरु यूसुफ़ा, तू हमेशा ही याद करता रहेगा यूसुफ को, क्योंकि ये बड़े हासिद थे यूसुफ से और उन्हें बड़ा बुरा लगा इस वक्त कि अभी भी बाप उसको याद कर रहा है। हत्ता तकूना हरदन, यहाँ तक कि तुम बीमार हो जाओ, औ तकूना, और या तुम हो जाओ, मिनल हालिकीन, हलाक होने वालों में। अब ये आयत नंबर 89 जो आ रही है, और 86 और 87, ये आपने गौर से सुननी है कि अब ये क्या जवाब दे रहे हैं उनको। काला, हज़रत याकूब ने कहा इन्नमा, इसके सिवा नहीं है, अश्कू, मैं शिकवा करता हूँ, अश्कू, शकवा, मैं शिकवा करता हूँ, मैं बयान करता हूँ, बस्सी, बा सा या, बस्सी, बस्सा का मतलब है बा सा सा, जो रूट है ना, इसका मतलब है मुंतशिर हो जाना, फैल जाना, दूर दूर तक, स्कैटर्ड। बस्सी यानी कि मैं इस वक्त मुंतशिर हो गया हूँ, मैं इस वक्त गुम गया हूँ, मैं इस वक्त हर तरफ, मेरे ज़ात जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई है। इन्नमा अश्कु बस्सी, इसके सिवा नहीं है कि मैं बयान करता हूँ अपने इस टुकड़े टुकड़े ज़ात की तकलीफ़ को, अपनी इस बेकरारी को, अपनी इस स्कैटर्डनेस को, वहुज़नी, और मेरे गम को, इल्लाह, अल्लाह के सामने। अब ये इस पैगंबर की शान है कि वो छोटा बच्चा खो चुका है और जवान बेटा भी खो चुका है, और जिन्होंने उनको गुमाया है वो उसके सामने खड़े हुए हैं, और ये मुंह भर के कह सकते हैं कि सब कुछ तुमने किया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि मैं अपना शिकवा करता हूँ, अपने इस बिखर जाने की शिकायत और अपने इस गम की शिकायत मैं किसको करता हूँ, इल्लाह, अल्लाह के सामने। वह आलमो, और मैं जानता हूँ, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। یعنی یہ غم جو ہے جب انسان اپنا غم صرف اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اللہ کو اپنا شکوہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ایک ایسا علم ملتا ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. اس آیت کا یہ مطلب ہے. یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اذهبوا، تم جاؤ، فتحسسوا، بس تم کھوج لگاؤ، من یوسف، یوسف کا، وہ اخی ہے اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا، اور تم نے مایوس نہیں ہونا، ولا تیأسوا، اور تم نے مایوس نہیں ہونا، من روح اللہ، روح اللہ، روح، یہ روح اللہ نہیں ہے، روح اللہ، اللہ کی رحمت. جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ گم گئے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے وہ مل بھی جائیں گے. اور اپنے اس غم میں جب میں نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا ہے اور اللہ کے سامنے میں رویا ہوں اور اللہ سے میں نے اپنا آپ شیئر کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم ملا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اور تم لوگ جاؤ اور ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. انہ لا یئسوا، نہیں، بے شک وہ نہیں مایوس ہوتے ہیں، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 87 ہے. تو یہ آیات آپ خود بھی پڑھیں، اس سے زیادہ تو اگر میں نے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھا تو شاید میں خود بھی رونا شروع کر دوں. لیکن ان آیات کا انسان کے دل پہ ایک عجیب اثر ہوتا ہے. یعنی انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ غم اور رونا دھونا اور دکھ جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے جو پیغمبروں کو دیا گیا ہے اور جس کے ذریعے ان کو آگہی دی گئی ہے اور انہیں الہامات دیے گئے ہیں. کوئی بھی کسی کے غم کا مداوع نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی کا بچھڑا ہوا، کسی کا گما ہوا پیارا واپس لا کے نہیں دے سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم اپنی چھوٹی سی عقل میں ہمیں یہ پتہ ہے. ہاں ہم ایک دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو غم ہے وہ آپ کو اللہ سے کہیں زیادہ قریب کر دے گا بنسبت آپ کے باقی دوستوں کے اور آپ کی باقی فیملی کے، اور اللہ کا قرب ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ سب دکھی دلوں میں ایک ٹھنڈک ڈالے اور اپنی محبت سے انہیں بھر دے، کیونکہ اللہ کی محبت کے سوا ٹوٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے دل اور کچھ بھی نہیں بھر سکتی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا فرمان بردار انسان بنا لے اور اپنی محبت سے ہمارے دل بھر دے. آمین ثم آمین.